हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 172। शिविका ने करण को ऋषभ के कपड़े दिए जो करण को ठीक ठाक आ गए थे। उन दोनों का साइज लगभग एक ही था, इसलिए करण ने उसके कपड़े पहन लिए और फिर वे दोनों वहां से सीधा अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही करण ने डॉक्टर से बात कर रखी थी। डॉक्टर ने बताया कि ऋषभ की हालत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन वे अभी उसे डिस्चार्ज नहीं करने वाले थे क्योंकि अभी उसका मेडिटेशन और ट्रीटमेंट जरूरी था जिससे वो पूरी तरह से सही हो पाए। उसके हाथ पैर में थोड़ी मूवमेंट भी थी तो शिविका को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आपको जो करना है वो भी करिए, चाहे जितना भी महंगा ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर किसी भी देश से बुलाने पड़े स्पेशलिस्ट, लेकिन आप मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मैं उन्हें इस तरह से नहीं देख सकती। ये बात बोलते हुए शिविका थोड़ी सी इमोशनल हो गई। करण ने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया उसे सहारा देने के लिए, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि कोई उसे देख ना पाए। डॉक्टर ने शिविका को तसल्ली देते हुए कहा, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ऑलरेडी। क्योंकि उस वक्त काव्या घर पर नहीं थी इसलिए हर्षिता भी करण और शिविका के साथ अस्पताल आ गई थी, लेकिन अभी तक उसे करण और शिविका की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इतनी सारी टेंशन के बीच इस बारे में उन दोनों ने हर्षिता को बताना जरूरी नहीं समझा था। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद शिविका वहां पर खड़ी होकर हर्षिता से बात कर रही थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। शिविका, तूने मुझे इस बारे में एक बात भी इन्फॉर्म तक नहीं किया, तुझे पता है मैं अंकल से कितना क्लोज हूँ, फिर भी? उस आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। वो आवाज सुनकर शिविका ने सामने देखा तो रुद्र उनकी तरफ आ रहा था। हर्षिता ने भी उसे नोटिस किया। उसकी बात सुनकर शिविका धीमी आवाज में खुद से बोली, इस इडियट के बारे में तो याद ही नहीं था मुझे, लेकिन अब सड़ा सा मुंह बनाकर शिकायत करेगा और पता नहीं क्या क्या सुनाएगा मुझे। रुद्र की आवाज सुनकर करण का भी ध्यान उसकी तरफ गया। वो ऋषभ और समर से बात कर रहा था और समर को उसके कॉलेज जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वहां पर काफी लोग थे तो समर को वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। समर वहां से चला गया और जब रुद्र वहां आया तो समर वहां नहीं था। अपनी बात बोलते हुए रुद्र एकदम शिविका के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं बताया मुझे, अकेले ही सब देख रही थी पागल कहीं की, बता देती तो कल से कितनी हेल्प कर सकता था ना मैं। अकेले नहीं हूं मैं, देखो ये सारे लोग हैं ना मेरे साथ, पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उस वक्त मैं भी घर पर नहीं थी, और फिर शिविका ने पूरी बात बताई। इस बीच उसने करण का नाम कई बार लिया। रुद्र बहुत ही शक भरी निगाहों से करण की तरफ देख रहा था और करण उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन करण ने उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने अभी तक इस बात पर डिस्कस नहीं किया था कि उनकी शादी के बारे में किसको बताना है और किसको नहीं। तो करण इस बात को लेकर थोड़ा केयरफुल था क्योंकि उसे पता था अगर उनकी शादी इस तरह से पब्लिक होती है तो ज्यादा असर शिविका की इमेज पर पड़ेगा क्योंकि वही फेमस और पब्लिक फिगर है। करण की लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करण को भी अपने घर में इस बारे में बताना था। उसके मम्मी पापा चाहे जैसे भी हों लेकिन हैं तो उसके पेरेंट्स ही। भले ही उसकी माँ सौतेली है लेकिन करण उन्हें उतना सौतेला नहीं मानता और उनकी लाख कमियों और गलतियों के बाद भी वो उन्हें अपना समझता है। करण को नहीं पता था कि उसके घर वाले इस तरह उनकी मौजूदगी के बिना हुई शादी को लेकर क्या रिएक्ट करेंगे और उनकी शादी एक नॉर्मल शादी की तरह होगी या नहीं। ये बात सोचते हुए करण वहां खोया हुआ सा था। दूसरी तरफ रुद्र शिविका के पापा से मिलकर बाहर आया, लेकिन उसकी शिकायतें अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। शिविका काफी देर से उसे सुन रही थी और उसे रुद्र के इस तरह बातें सुनने की आदत थी, इसलिए वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी। लेकिन शिविका के साथ बैठी हर्षिता से वो सब कुछ सुना नहीं गया। उसने खड़े होकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, बस करो रुद्र, मेरे कान में छेद हो जाएगा, कब से तुम्हारी शिकायत ही खत्म नहीं हो रही थी, मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, और नहीं बताया तो ना सही, लेकिन फिर भी तुम्हें पता तो चल गया ना, और अब तुम यहां हो तो बस खत्म करो बात को यहीं। हर्षिता के इस तरह चिल्लाकर ये बात बोलने पर वहां आसपास से गुजरते हुए पूरे अस्पताल स्टाफ के लोग और बाकी पेशेंट या उनके साथ आए लोग उन सब की तरफ देखने लगे। उन सब लोगों को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए रुद्र की भी बोलती एकदम बंद हो गई और वो हैरानी से हर्षिता की तरफ देखने लगा, क्योंकि रुद्र को बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि उस पर इस तरह कोई चिल्लाए, फिर चाहे वो जो भी कर ले, इसीलिए रुद्र थोड़ा सा शर्मिंदा था। हर्षिता ने उसे इस तरह डांटा तो शिविका अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी करण वहां आया और उसने रुद्र से कहा, सर अगर आप चाहें तो अभी भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और जो हो गया उसके लिए चिल्लाकर कोई मतलब नहीं है। करण ने बहुत ही समझदारी से ये बात बोली। रुद्र पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए शिविका से बोला, वैसे शिविका तुम्हारा असिस्टेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है, अगर तुम कभी इसे निकालना चाहो तो बताना, मैं डैड से बोलकर अपनी कंपनी में काम दे दूंगा इसे, या फिर इसे अपने साथ ही रख लूंगा। रुद्र की ये बात सुनकर करण और शिविका दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ ही बोले, नो वे। उन दोनों का ऐसा रिएक्शन रुद्र को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन शिविका जब तक आगे चलते हुए उन दोनों के बीच आ गई और रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या ऐसे क्यों बोला, जैसे कि तुम्हें झटका लगा हो किसी बात का। हाँ झटका ही लगा, तुम तो बात भी ऐसी कर रहे हो, एक तरफ मेरे असिस्टेंट की तारीफ भी कर रहे हो और दूसरी तरफ उसे लेने के लिए भी तैयार बैठे हो, मैं अपना असिस्टेंट नहीं देने वाली, इतना बोलते हुए शिविका ने करण का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। आज पहली बार किसी के सामने इस तरह से उसने करण का हाथ पकड़ा था, तो करण को काफी अच्छा लग रहा था। रुद्र ने उन दोनों की इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि ऋषभ अब पहले से काफी बेहतर है, लेकिन आप में से कोई एक ही व्यक्ति यहाँ पर उसके साथ रह सकता है। बाकी लोगों के रुकने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पहले से ही स्टाफ और इतने सारे लोग हैं उसकी देखभाल के लिए। डॉक्टर ने उन सबको समझाया। डॉक्टर की बात समझते हुए एक एक कर वे सारे लोग वहां से चले गए। ना चाहते हुए भी शिविका को वहां रुकना पड़ा, लेकिन वो सच में अपने पापा से बहुत प्यार करता था। सामने चाहे उसकी उनसे जितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन पीठ पीछे वो बस यही चाहता था कि जल्दी से उसके पापा उठकर बैठ जाएं और पहले की तरह उनके हाथ पैर भी काम करने लगे। करण और शिविका एक साथ कार में वहां से निकले। कार में बहुत ही सन्नाटा था। तभी रास्ते में करण को एकदम से कुछ याद आया। उसने शिविका की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम मेरे घर चलकर रहोगी ना अब, क्योंकि हमारी शादी हो गई है तो?
तुम्हारे घर? लेकिन इस बारे में तो हमारी बात हो गई थी ना, और हम दोनों तुम्हारे घर पर मैं कैसे मैनेज करूंगी? मेरा मतलब है काव्या, वो और इस बारे में अभी किसी को भी पता नहीं है। और तुम दोनों? इतना बोलते हुए शिविका एकदम ही घबरा गई। वो ये सब कुछ बोलते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। करण ने उसे इस तरह से देखा तो हंसते हुए बोला, अरे रिलैक्स रिलैक्स, तुम तो बिल्कुल ही सीरियस हो गई, मैं बस ऐसे ही पूछ लिया। कोई बात नहीं अगर तुम्हें अभी घर नहीं चलना, लेकिन ये बताओ आगे का क्या प्लान है, और तुम रुद्र को इस बारे में बताने वाली हो या फिर नहीं? करण के सवाल सुनकर शिविका थोड़ी सी सोच में पड़ गई। इन सारे सवालों के बारे में उसने खुद ही अभी तक कुछ भी नहीं सोचा था, तो वो करण को क्या जवाब देती, इसीलिए वो इस बारे में थोड़ा सोच रही थी। और फिर वे दोनों इस तरह एक साथ वहां से ऑफिस आ गए। वहां पहुंचने में उन दोनों को थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन वे दोनों एक साथ ही ऑफिस आए। इस बात को ऑफिस के कुछ लोगों ने नोटिस किया, लेकिन इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे दोनों आपस में बात करते हुए गेट से एक साथ अंदर आए। उस वक्त वे दोनों किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपस में ही बात कर रहे थे। और तभी वे दोनों शिविका के केबिन के पास पहुंचे, तभी उनके कानों में एक आवाज आई, मैम 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 एक मिनट रुकिए रुकिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये देखिए, पीछे से एक जानी पहचानी से आवाज आई, जो वहां ऑफिस में काम करने वाले किसी स्टाफ की थी। लेकिन उसकी आवाज सुनकर शिविका और करण दोनों ही वहां रुक गए। शिविका ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, क्या दिखा रहे हो, बोलो। शिविका की ये पूछने पर उस आदमी ने अपने हाथ में पड़ा हुआ पैकेट उठाकर अपने सामने करते हुए कहा, ये पार्सल आया है आपके नाम से, लेकिन किसने भेजा है इस बारे में पता नहीं चला। हमने चेक कर लिया है, वैसे तो सेफ है, लेकिन एक बार आप? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शिविका ने उसके हाथ से वो पैकेट ले लिया और बिना कुछ बोले ही उसे लेकर एकदम अपने केबिन के अंदर आ गई। करण भी उसी तरह कन्फ्यूजन में उसके पीछे पीछे अंदर उसके केबिन तक आया, क्योंकि उसे भी किसने भेजा है इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं था। क्रमशः